हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री शुक उवाच, क्वचिद् वनासाय मनो दधत् व्रजात्,
क्वचिद् वनासाय मनो दधत् व्रजात्,
प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्, प्रबोधय श्रृङ्गरवेण चारुणा, विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः, हरे कृष्ण। अब वत्स चारण लीला के करीब करीब अंतिम प्रसंग चल रहा है। श्री भगवान बछड़ा चरा रहे हैं, तो प्रतिदिन सुबह के भोजन के बाद, बाल भोग के बाद निकलते थे लगभग 9 बजे के आसपास, और लंच के पहले लौट आते थे, 2-3 घंटा खेल कर आ जाते थे, और कभी कभी सुबह में ही निकल जाते थे। तो आज सुखदेव गोस्वामी एक स्पेशल लीला का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान सोए हुए बच्चों को भोर में बहुत जल्दी जग करके, प्रातः समुत्थाय एकदम ब्रह्म मुहूर्त में जग कर, जब गायें दुही जा रही थी उसी समय सिंह बाजा बजाए। सिंह बाजा मरी हुई गायों के सिंह जो पड़े रहते हैं उसके नुकीले भाग को पत्थर पर रगड़ करके थोड़ा सा छेद कर दिया जाता है, और वही बाजा बजाते हैं। श्री कृष्ण केवल बंसी ही नहीं बजाते, सिंह बाजा बजाते हैं, बेणू बजाते हैं, बांस की बनी हुई बांसुरी, और कभी कभी पत्ता को गोल करके उसका भी सीटी बजाते थे। तो कई बाजा बजाते थे, और सभी ब्रजवासी इस प्रकार के बाजे बजाते थे। तो सिंह बाजा भोर में जगे और बेड पर से ही बजा दिए स्पेशल, और वह बाजा केवल बच्चों को सुनाई दिया। जितने अपने साथी वत्स चारण में जाते थे बछड़ा चराने, उनको मोबाइल फोन की तरह केवल उनको सुनाई दिया, और किसी को नहीं। तो उसी बाजा में अपने मन की बात भी बता दिए कि आज अभी निकलना है बछड़ा चराने के लिए। और संजोग की बात कि श्री बलराम जी उस दिन नहीं गए, सभी बच्चे आ गए नंद भवन पर। तो गायें दूह ली गई थी, गाय दूहने के बाद जो चरवाहे गाय को लेकर सूर्योदय होते होते या उसके पहले ही निकल जाते हैं, भोर में गाय दूही जाती हैं लगभग 3:30-4 बजे, 5 बजे से के आसपास बच्चे चरवाहे निकल जाते हैं। तो उधर चरवाहे अपने गायों को लेकर निकले, और इधर कृष्ण के साथ सभी ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर। तो सुखदेव गोस्वामी एक विशेष बात कहते हैं कि ऐसा क्यों किए, बनासाय मनो दधत ब्रजात। बनासाय वन में भोजन करने की इच्छा से, वन आसाय वन में कलेऊ करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने की इच्छा हुई कि आज घर में खाकर नहीं जाएंगे वन में खाएंगे। तो वन में खाने के उद्देश्य से भोर में बछड़ों को लेकर चल दिए। तो वन में खाने के लिए क्या मिला, अब तो कोई भोजन तैयार था नहीं, तो जो घर में रेडीमेड भोजन था, लड्डू पेड़ा गाय के दूध से बने हुए विविध प्रकार की मिठाइयाँ प्राय बच्चों के लिए बनाकर माताएं रखती थीं, बड़ा समृद्ध ब्रज था, गाय के दूध से घी से बने हुए बहुत से मिष्ठान होते थे और दही सबके घर में है तो एकदम सजाओ दही, और रात का बना हुआ रोटी या भात, दही भात भगवान को बहुत प्रिय था तो बासी भात दही के साथ खाएंगे। तो सब लोग अपना टिफिन ले लिए, किसी बर्तन में लेकर अपने अंगोछे में बांध लिए, इसका वर्णन आगे है। तो निकल गए समुत्थाय सुबह सुबह जग कर वयस्य वत्सपान, अपने साथियों के साथ, वयस्य समान उम्र वालों के साथ, बच्चों के साथ और वत्सपान बछड़ों के साथ निकल गए। बहुत सुंदर दृश्य था, बछड़ों को आगे करके गोकुल से निकले। ब्रज कहते हैं, कभी कभी ब्रज 84 कोस को ही केवल नहीं कहते, जहाँ गायें रहती हैं उस स्थान को, उस खीरक को, गोशाला को ब्रज कहते हैं। तो यहाँ ब्रजात का अर्थ है गोशाला से बाहर निकले, बछड़ों को लेकर बाहर वन में के लिए निकले। ब्रजात, ब्रजात का सीधा अर्थ कहते ब्रज से बाहर चले गए, ब्रज भूमि से बाहर चले गए। तो ऐसा नहीं, विनिर्गतः मने खीरक से बाहर निकले। प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान, और ऐसे बच्चों को प्रबोधयन, उनको प्रबोधित किए, सूचना दिए। सिंगर वेण चारुणा, बहुत सुंदर सिंह बाजा बजाए। चारुणा उसके सौंदर्य के लिए कहते हैं, अत्यंत मधुर वाणी में अपने साथियों को प्रबोधित किए कि आज चलो निकलते हैं। तो विनिर्गत निकल गए वत्स पूरा, बछड़ों को आगे करके श्री हरि भगवान, श्री भगवान अपने साथियों के साथ वत्स चारण के लिए आज तड़के सुबह में ही निकल गए। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, भोर में ही निकल गए, लगभग 5 बजे के आसपास या उसके पहले भी 4:45 बजे। तो निकले जब बाहर, तो बच्चे आज बहुत प्रसन्न हैं, सब लोग के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सभी लोग अपने भोजन के सामग्री लिए थे, छोटे छोटे छड़ी में अपना टिफिन, छोटा सा कटोरी में अपना भोजन लिए थे, कपड़ा में बांधकर और लटकाए हुए थे, और सभी लोग बाजे लिए थे, सिंह बाजा, बेड़ू, बेत लिए थे, बांसुरी लिए थे और ऐसे पगड़ी बांध लिए थे। सब लोग निकले। ते नैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाण बेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत विनिर्ययुर्मुदा। सभी बच्चे श्री कृष्ण के साथ निकले। कितनी संख्या थी? सहस्रशः, सहस्रों, हजारों हजार बच्चे कृष्ण के साथ निकल रहे हैं, और बछड़ों को वत्सान पुरस्कृत, बछड़ों को आगे कर दिए हैं, बछड़े आगे फुदकते हुए जा रहे हैं। माता के दूध पीने के बाद बछड़े बहुत छटकते हैं, फुदकते हैं, तो अब आज बछड़े भी बड़े प्रसन्न हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं फुदकते हुए, नाचते हुए, उछलते हुए, आगे आगे बछड़े चल रहे हैं। अब विनिर्ययुर मुदा, बछड़े भी आनंदित हैं और बच्चे भी आनंदित हैं। मुदा का मतलब है प्रसन्न है, बहुत खुश है। बाहर निकल गए तो सहस्त्र ऊपरी संख्या अन्वितान, हजारों हजार की संख्या, हजारों की संख्या में बच्चे निकल रहे हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप का वर्णन करते हैं कि ऐसे बच्चे सुंदर छीके लिए थे। स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाण वेणवः, सभी अपने अपने पास भोजन की सामग्री लिए थे, अपना वेत दंटा लिए थे, छड़ी लिए थे, बेड़ू लिए थे और सिंह बाजा भी लिए थे। इस प्रकार बड़ी सुंदर सौंदर्य था, बंसी बजाते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए जा रहे हैं। कृष्ण वत्सैर असंख्यात ही ज्योति कृत स्वत्सकान चार्यंतोर्भ लीला भी बिजरहुस्तत तत्र। श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ चल रहे हैं, उनके साथ बछड़ों की संख्या के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में थे, असंख्यात ही कह रहे हैं, असंख्य असंख्यात कृष्ण बत्सैर असंख्यात ही, कृष्ण के बछड़े असंख्य थे, काउंटिंग नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा थे, कृष्ण के अनगणित बछड़े थे और सभी गोप सखा अपने बछड़ों को कृष्ण के बछड़ों में मिला दिए और बालोचित खेल खेलते हुए निकल गए। चारयंतर भलीला भी बिजरहु तत्र तत्र युथिकृत्य सो वत्सपान, वत्सकान का अर्थ कहते हैं कृष्ण वत्सैर असंख्यात, कृष्ण के असंख्य बछड़ों में युथिकृत एक ग्रुप में मिलाने के लिए सो वत्सकान सभी बच्चे अपने बछड़ों को मिलाकर चल रहे हैं और चलते समय बड़े आनंदित खेलते हुए चल रहे हैं। बिजरहु ऐसे सीधे साधे सावधानी के साथ गंभीर नहीं है, उछलते कूदते जा रहे हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण वत्सैर असंख्यात पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं, असंख्यात का अर्थ है अनंत, कृष्ण के बछड़े अनंत थे, अनंत का अर्थ है सौ हजार लाख करोड़ नहीं, इससे भी ज्यादा। कृष्ण अनंत हैं और उनकी शक्ति अनंत है, उनकी गायें और बछड़े अनंत हैं, उनका स्थान भी अनंत है, इसीलिए भगवद गीता में उनको परब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत, अनेक अर्थ है ब्रह्म का, उसमें एक अर्थ अनंत भी है। तो इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, ये यथार्थ है किंतु अचिंत्य है, हमारे दिमाग के बाहर का चीज है। असंख्य बछड़ों को और असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं, यह काल्पनिक है न मिथ्या है, किंतु हम अपने सीमित ज्ञान से कृष्ण की शक्ति को जानना चाहें तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियी, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण की लीला, ये सब हमारे इंद्रियों के पकड़ के बाहर का चीज है, हमारी इंद्रियां इसका अनुमान नहीं लगा सकती कि कृष्ण किस तरह से असंख्य बछड़ों और गांवों को संभाल करते थे। तो ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान कहाँ रहा होगा, अपनी बुद्धि से हम विचार करने लगते हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, महाराज श्री कहते हैं कि एक बार एक ग्वालिन कहीं दूध बेचती थी अपने लोटा से नाप नाप करके, तो एक दिन वह कपड़ा खरीदने के लिए किसी कपड़े के दुकान पर चली गई, तो कही कि हमें कुछ कपड़ा दे दो। तो कपड़ा नापने के लिए अपना मीटर उठाया, गज जो भी रखा था पैमाना, उसे नापने लगा, तो पूछा कितना मीटर। मीटर? अरे हमारे लोटा से दो लोटा नाप कर दो। दूध नापने वाली लोटा ली थी, तो कहा माता जी इसका पैमाना दूसरा है, सारा जिंदगी इस लोटे से नाप, दूध नापते नापते बीत गया, तुम्हारा दूसरा हो गया, इसी से दो, इसी लोटा में नाप कर दो लोटा चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे किसी प्रकार इस लोटे से भगवान को भी नापने लगते हैं, इस दिमाग से, इसके बाहर की चीज भगवान है, उनका अलग पैमाना है, उनको समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। जब अपने साथी अर्जुन को भी उनके ऐश्वर्य को देखने की जरूरत पड़ी तो भगवान कहे कि इस लोटा से नहीं होगा, दिव्यम ददामिते चक्षु, तुमको अब दूसरा दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि दूंगा, अलग चश्मा लगाना पड़ेगा। तो श्री भगवान उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना ऐश्वर्य दिखाए। तो उसी प्रकार हम अपने बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं तो नहीं समझ पाते। बृहद भागवतामृत में मिलता है एवं प्रभो प्रियानाम च धामनश्च समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावात्वाद अत्र किंचित दुर्घटम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में बतलाए हैं कि कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, अतएव उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। इस प्रकार चल रहे हैं और चलते चलते वन में आज अद्भुत सौंदर्य है, सूर्योदय अब पूर्व दिशा में सूर्य निकलने वाले हैं, आकाश की लालिमा है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं। फल प्रवाल स्तबक सुमन वृक्ष धातु भी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अप्य भूषयन। यद्यपि बच्चे सब बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहने थे, वे कांच की शीशे की माला पहने थे, मणि की माला पहने थे, घुंघची स्वर्ण के गहने पहने थे। घर से निकलने वाले सभी, यद्यपि काम उनका चरवाहे का है, लेकिन हैं बहुत संपन्न। सबके गले में कुछ न कुछ माला है, कांच की माला है, सोने की हार है, घुंघची की माला है, बहुत सुंदर माला धारण किए हैं। लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश किए तो पीले पीले फूल फले फूले हुए थे, फल लगे हुए थे जो हाथ से पकड़ में आ सकते थे, उन फलों को तोड़ लिए। नई नई वृक्षों के कोपलों को, जो पतझड़ के बाद वृक्षों में नया नया पत्ता आता है उसको कोपल कहते हैं, तो उसको तोड़ लिए, उसको फल प्रवाल कहते हैं। स्तबक सुमन वृक्ष धातु भी, यदि कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिताप्य भूषयन, यद्यपि वो श्रृंगार किए हुए थे फिर भी वृंदावन के फल, छोटे छोटे फल फूल और प्रवाल कोमल पत्ते तोड़ करके अपना श्रृंगार करने लगे, और उसमें गेरू रंग के पत्थर को रगड़ करके पानी किनारे सरोवर किनारे और उससे अपना श्रृंगार करने लगे। इस प्रकार बहुत सुंदर अपने को सजा रहे हैं, और वन में गिरा हुआ मोर पंख भी अपने सिर में लगा लेते हैं। केवल कृष्ण ही मोर पंख नहीं लगाते थे, सभी बच्चे लगाते थे, जो कृष्ण करते वो सब लोग करते थे। तो अपने को सजा लिए। मुष्णन्तोन्योन्य शिक्षा दिन ज्ञाता नाराश्च चिच्छिपुः अतत्याश्च पुनर्दुराध संतस्य पुनर्ददुः। इसके बाद चलते चलते बच्चे चल रहे हैं, झुंड में हजारों बच्चे हैं, तो स्वभाव तो चंचल है खेलने का, आनंद लेने का। अपने बेंत में पीछे जो टिफिन लटका कर चल रहे थे खाने के लिए ले जा रहे थे, तो कोई बच्चा पीछे से उसको सरका कर खींच लेता है, उसके एक बर्तन को, और जब वो पीछे देखता है तो दिखता नहीं, वो दूसरे के पास फेंक दिया, दूसरा पकड़ कर तीसरे के पास। और वो अगर छोटा बच्चा है तो पीछे पीछे दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, तो कोई किसी दूसरे को, कोई किसी का बेत खींच कर फेंक देता है, किसी की बांसुरी। आ जब उसके स्वामी को, जो जिसका है उसको पता चलता है तो दौड़ता है लेने के लिए, तो जिसके पास है वो दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, इस तरह तीसरा चौथे के पास, और फिर खूब हंसते हैं, खूब चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को इस तरह परेशान करते हुए खूब हंसते हंसाते जा रहे हैं। अत्यश्च पुनर्दुराद हसंतस्य पुनर्ददौ, खूब हंस कर फिर दे देते हैं, उनको लौटाते हैं लेकिन कुछ परेशान करके। इस प्रकार खेल ये आध्यात्मिक खेल है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह का खेल और चोरी इस भौतिक जगत में भी पाई जाती है, क्योंकि इसमें मनोरंजन होता है ज्यादा। कोई चोरी इसलिए नहीं कि चुरा लेना है, ले लेना है, आनंद के लिए अपने साथियों में इस तरह की चोरी और खेल देखा जाता है, और इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है। यहाँ इस जगत में जिस प्रकार अपने साथियों के हंसी मजाक किया जाता है, क्योंकि यह उल्लास शाश्वत है, आनंद है, और भौतिक जगत में क्षणिक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए है कि वह किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है। ये प्राकृत खेल क्षणिक है, और आध्यात्मिक जगत में यही केवल है, आनंद ही आनंद। कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस तरह से आध्यात्मिक जगत में उनके आध्यात्मिक पद का आनंद ले सकते हैं। वे न केवल आते हैं बल्कि वृंदावन में लीला प्रदर्शित करते हैं और लोगों को आकृष्ट करते हैं अपनी लीलाओं से। कि जिसको जत श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर लोग कृष्ण के परायण हो जाएं। और ऐसे चलते चलते बच्चे जब आपस में खेलते हैं तब तक कृष्ण कुछ दूर निकल गए। आज के हीरो कृष्ण हैं, बलराम जी नहीं है। आज बलराम जी के रहने पर कृष्ण को कुछ मर्यादित रहना पड़ता था, क्योंकि वो ज्यादा इधर उधर नहीं करने देते थे, डांट देते थे, पीछे चलो, आगे मत जाओ, वृक्ष पर मत चढ़ो, नदी में मत घुसो। लेकिन आज कृष्ण खेले हैं, तो यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभेक्षणाय तम अहम पूर्वम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। तो यदि कृष्ण दूर निकल जाते, कुछ तेज चले जाते, और क्यों चले जाते तेज, तो वन शोभेक्षणाय तम, वन की शोभा देखते। आज विशेष शोभा दिख रही है, क्योंकि आज एकदम सुबह सुबह का सौंदर्य, बच्चे ऐसा नहीं देखे थे, क्योंकि वो निकलते थे 9-10 बजे धूप में, और आज अभी सूर्योदय ही नहीं हुआ है, प्रकाश है सूर्य के आने से पहले जो प्रकाश छाता है पूरब दिशा में लालिमा के साथ, वो प्रकाश था। तो उन शोभा को देखते हुए, वृक्षों को देखते हुए, कुछ आगे जब बढ़ जाते थे तो पीछे से बच्चे दौड़ते थे खूब कंपटीशन में, अहम पूर्वम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, मैं पहले छूंगा पहले मैं छूंगा, ये होड़ लगाकर दौड़ पड़ते, और दौड़ करके एक साथ कई लोग कृष्ण को छूते थे, स्पर्श करते थे। संस्पृश्य रे मिरे, उनको छूने में बहुत आनंद की अनुभूति करते थे, बहुत आनंद लेते थे, आनंद मग्न हो जाते थे, रम जाते थे। और फिर आगे, केचिद वेणु वादयन्तो ध्वन्तः शृंगारी केचन केचिद भृंगई प्रगायन्तः कुजन्तः कोकिलैः परे। अब चलते हुए बच्चे कोई बांसुरी बजा रहा है, केचिद वेणुन वादयन्तो, कोई वेणु बजा रहा है, ध्वामन्तः शृंगारी केचन, कोई दूसरा सिंगी बाजा बजा रहा है, सिंह का, गाय के सिंह का बाजा फूंक रहा है। केचित भृंगई प्रगायन्तो, और कुछ लोग कोई बाजा नहीं बजाते हैं, भौरे के स्वर में स्वर मिलाकर गुनगुनाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, तो उनके साथ कुछ लोग गुनगुनाते हैं। और कुजंता कोकिलई परई, कुछ बच्चे कोयल के स्वर में स्वर मिलाकर कूकते हैं, कू कू ऐसे बोलते हुए, कुजंता कोकिलई परई, कुछ लोग कोकिल के स्वर में स्वर मिलाकर बोल रहे हैं। और कुछ बच्चे, अभी सूरज नहीं निकले हैं लेकिन प्रकाश है, तो ऊपर जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, भिक्षाया भी प्रधावंतो गच्छन्त साधु हंसकै, तो कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षी की छाया के साथ दौड़ लगाते हैं। अथवा बाद की घटना को क्रम में सुखदेव गोस्वामी पहले कह दिए, कभी कभी आकाश में जब पक्षी उड़ते थे तो पक्षी के छाया प्रतिछाया धरती पर पड़ती, तो उस छाया के साथ दौड़ते थे। तो भिक्षाया भी प्रधावंतो गच्छन्त साधु हंस कई, और कुछ लोग हंसों की चाल का नकल करते, सरोवर में कोई हंस चलता तो उसके साथ चलते। और बकई रूप विषंतस्य निर्दंता कलापि भी, कुछ लोग बकुले के समान आंख मुंद करके नदी के तट पर नकल करते, बकुला नदी के तट पर या सरोवर के तट पर ऐसे समाधि में रहते हैं, आंख बंद करके चुपचाप, लगता है कि महासमाधि में है, लेकिन उसके भीतर की भावना है कि मछली निकट आ जाए रेंज में तो तुरंत चोंच से पकड़ेगा। तो मछली को देखने के लिए ऐसे खड़ा रहते हैं तट पर, एकदम नदी के तट पर। तो बगुलों के साथ उनका नकल करते हुए कुछ लोग बकई रूप विषंतस्य, बकुले का नकल करके आंख मुंद कर बैठ जाते हैं। और कुछ बच्चे नृत्यंतस्य कलापि भी, कुछ मोर नाच रहे हैं तो उनके साथ अपना उत्तरीय गमछा फैलाकर वो भी नाचते हैं। और बिकर संत किस बाला नाम आरोहंत शतई द्रुमान, कुछ बंदर वृक्ष के टहनियों पर बैठे हैं, तो टहनियों पर बैठने से उनका पूंछ नीचे लटका हुआ है, तो कुछ बच्चे जाकर उसके पूंछ को पकड़ कर खींच देते हैं। चंचल है, खेल रहे हैं। विकर्षंत किस बाला नाम आरोहंत शतई द्रुमान, जो पेड़ के डालियों पर बैठे हुए बंदरों की पूंछ पकड़कर खींचते हैं, और कोई कोई बंदरों के साथ पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और बंदर जब इस डाल से उस डाल पर उछलते हैं तो बच्चे भी उछलते हैं। विकुर्वंत शतई साकम, उनके साथ पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और बंदर जब बच्चों को देखते हैं तो मुंह बनाते हैं, घुड़की लगाते हैं। इतना जोर बंदर मुंह बनाकर डरवाते हैं कि एकदम व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति भी कांप जाएगा। एकदम किसी के भी हृदय को कपा देने के कारण ही उनको कॉपी कहा जाता है बंदरों को। तो बच्चे भी एकदम साहसी हैं, बंदरों के साथ मुंह बनाते हैं। बिकुर्वंतश्च तै साकम् प्लवंतश्च पलाशिषु, और जब बंदर मुंह बनाते हैं तो बच्चे भी उनके साथ मुंह बनाते हैं, और उनके साथ एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग भी लगाते हैं, डरते नहीं। साकम भेकई विलंघ्यंतः सरित प्रस्रव वसंप्लुता विहंसंतः प्रतीक्षाया सपंतश्च प्रतिस्वनान, और बहुत से बच्चे नदी के तट पर, जमुना के तट पर कछार में निकट जाकर पानी के साथ खेलते हैं, छपका ऐसे ऐसे पानी को करते हैं, छप 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 खेलते हैं। और वहीं नदी के तट पर मेढक हो तो मेढक ऐसे रेंगते हुए नहीं चलते हैं, मेढक चलते चलते अपने पैरों को बटोर करके ऐसे चलते हैं, फुदक कर चलते हैं, थोड़ा सा उछल कर। तो बच्चे भी मेढक की तरह अपने पैर और हाथ को बटोर कर फुदकते हैं, मेढक की तरह फुदकते हुए मेढकों के साथ फुदकते हैं। और कोई पानी में अपनी परछाई देकर हंसी करते हैं। बिहन संत प्रतीक्षाया, अपने प्रतिछाया को देखकर उसके साथ मजाक करते हैं, कुछ बोलते हैं, प्रतिध्वनि करते हैं। सपंतश्च प्रतिस्वनान, नदी के कछार पर और पहाड़ के निकट आवाज प्रतिध्वनित होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो पर्वत से टकरा कर आवाज आता है, चाहे नदी के तट पर भी ऐसा होता है। तो बच्चे जोर से बोलते हैं। सपंतश्च का मतलब गाली भी देते हैं, गाली देते हैं तो उधर से गाली सुनाई देता है, आवाज आता है। कभी कभी उधर झारखंड प्रीचिंग के समय पहाड़ों से गुजरना होता था, तो हम लोग कभी कीर्तन करते हुए हैंड माइक में हरी बोल बोलते तो इतना तेज आवाज उधर से आता, हरी तो साथ में छिप जाता लेकिन बोल बहुत जोर से सुनाई देता था, बोल। फिर हरे राम तो हरे नहीं सुनाई देता, राम बहुत स्पष्ट सुनाई देता, और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा तो महाराज जी कहते थे देखो ये जड़ पर्वत भी हरि नाम बोल रहा है, और ये मूर्ख मनुष्य बोलने पर भी नहीं बोलते, तो वृक्ष भी बोल रहे हैं, पर्वत भी बोल रहे हैं, तो बहुत सुंदर आवाज आता है। तो सपंतस्य, बच्चे हैं, स्वाभाविक आवाज जब नकल करता है, नदी के प्रतिध्वनित होता है तो बच्चे गाली भी देते हैं, तो गाली भी उसी तरह टकरा कर आता है। तो इस प्रकार बच्चे खेल रहे हैं बहुत आनंद के साथ। तो इस आनंद को अनुभूति करते हुए, लीलाओं को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी अब बीच में अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, कमेंट्री। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हु कृत पुण्य पुञ्जा। ते भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, तत्ववेता लोग, उनके लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। बैठकर ध्यान करते हैं, ध्यान में स्थित होकर ब्रह्म चिंतन करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, तो ऐसे उनके मन में भगवान आते हैं। अगर ध्यान करते हैं तो ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। और कुछ दास्यम गतानाम पर दैवतेन, जो दास भाव से भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान वही कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, आराध्य है, सर्वाराध पर दैवतेन, परम पुरुष सर्वश्रेष्ठ आराध्य है। ऐसे भक्तों के लिए जो आराध्य है, जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्मानंद स्वरूप है, माया श्रिता नाम नरदार केण, अपनी लीला से कृपा से वे मनुष्य बालक बने हुए हैं। कहते माया श्रिता नाम मतलब बहिरंगा माया के प्रभाव में पड़े लोगों के लिए नरदार केण केवल मनुष्य के बच्चे हैं। एक गोप का लड़का है जिनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, जो माया मोहित है, विषयों से अंधे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो नरदार केड़ा केवल एक मनुष्य का बालक है। साकम बिजरहु कृत पुण्य पुंजा, वे पुण्य पुंजा साधारण पुण्य से ऐसा सौभाग्य नहीं मिल सकता है, उन्हीं भगवान के साथ है। वे पुण्यात्मा महात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। जिनको लोग ब्रह्म परमात्मा भगवान कह करके तत्ववेता लोग वर्णन करते हैं, जिनको भक्त जन अपना प्राण आराध्य ईश्वर मानकर आराधना करते हैं, और संसारिक लोग जिनको एक साधारण मनुष्य का बालक समझते हैं, उन्हीं प्रभु के साथ वे सौभाग्यशाली गोप सखा लोग खेल खेल रहे हैं। साकम बिजर, साथ में बिजर हो खेल रहे हैं। कृत पुण्य पुंजा, बच्चों के लिए कहते हैं जो पुण्य के पुंज है जिनके पास बहुत ज्यादा पुण्य, साधारण पुण्य से भगवान के साथ रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा पुण्य होता है तब ये अवसर मिलता है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है कि तस्मात केनुपाये न मनः कृष्णे निवेशयेत, भक्ति रसामृत सिंधु में, चाहे कुछ भी हो किसी भी प्रकार किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम समझे, चाहे परमात्मा समझे, भगवान समझे, मन उनमें केंद्रित होना चाहिए किसी भी तरह। तो यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण और उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है कि लोग जान जाएं। लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सातवत संहिताम, सुत गोस्वामी व्यासदेव के विषय में कहते हैं कि व्यासदेव जब भगवत स्वरूप का चिंतन किए और इसके बाद माया के स्वरूप का दर्शन किए और जीवों की दुर्दशा को देखे, तो जीवों के कल्याणार्थ इस सातवत संहिता भागवत की रचना किए। क्यों? कि उनको पता था कि लोकस्य अजानतो, लोग नहीं जानते हैं भगवत स्वरूप को, इसलिए इनको जानने के लिए भागवत बड़ा उपादेय ग्रंथ है। इसलिए विद्वान, लोग नहीं जानते थे, व्यास देव जानते थे, तो जानकार व्यास देव सातवत संहिता की रचना किए। सफलता का रहस्य समान लोगों को ज्ञात नहीं, इसलिए इस जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग के लोगों के लिए श्रील व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैश्वानाम प्रियम, श्रीमद् भागवतम के अंतिम अध्याय में वर्णन है, 12वां स्कंद के 13वें अध्याय में, वे वैष्णव जन जो भगवान की महिमा और ऐश्वर्य शक्ति से परिचित हैं उनके लिए तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है, प्रिय ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना ही होगा। यदि हम भगवद गीता और भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने अगला शरीर कैसा प्राप्त होगा। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य कृष्ण की संगति प्राप्त होती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुनः, भगवान कहते हैं कि वो शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से मेरे पास आता है। इसके आगे भी जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को ठीक से जान जाता है, ठीक से वर्णन भागवतम में है, भगवद गीता में है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना, वह शरीर त्यागने के बाद फिर से माँ के गर्भ में नहीं जाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, फिर से जन्म नहीं लेता। तब क्या होता है? तो माँ मेति मेरे पास आता है, निश्चित रूप से वो मेरे पास आता है। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवत का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याणकारी कार्य है। योगिनाम अपि सर्वेषाम, सबके लिए यह श्रीमद् भागवतम है। इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, एक दूसरे को वितरण करना चाहिए और सुनना चाहिए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जीवन का लाभ यह है कि भगवान की नारायण की स्मृति बनी रहे। अंते का अर्थ दो है, अपने जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, या जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारी और उद्देश्य है, प्लानिंग है लोगों का, यह काम है, यह बाकी है, अभी ये करना है, योजना से ग्रस्त सारा संसार है, कुछ न कुछ प्लानिंग सबका है, लेकिन उस प्लानिंग में, उस योजनाओं में फाइनल योजना यह हो जाए कि भगवान का ही स्मरण करना है, तो यही जीवन का लाभ है। अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण हो जाए तो अंते नारायण स्मृति ही, भगवान ही लक्ष्य हो जाए। मुचकुंद महाराज कहते हैं अपने स्तुति में कि हे नाथ, हमने राजा पद से बहुत सारा योजना बनाया, बहुत काम किया, इसको जीतना है, अभी ये कब्जा में हो गया, वो बाकी है, हमारे यहाँ योजनाओं का लिस्ट पड़ा है, सूची, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस सूची में आपका स्थान नहीं रहा। सब योजना है, सब ठीक ठाक था, लेकिन आपके साथ संबंध रहना चाहिए यह नहीं था, उस योजनाओं में आप नहीं थे, दिन दुना रात चौगुना काम करने में लगा हुआ था। लेकिन वैसे लापरवाह लोग जो अपने योजनाओं में व्यस्त रहते हैं, वे काल स्वरूप आपको नहीं देखते। तो उदाहरण देते हैं, जैसे पूरा बिजी लाइफ जीने वाला चूहा, कभी वहां का अनाज अपने बिल में लाकर रखता है, कभी कुछ खाना होना नहीं है, केवल कलेक्शन करना है, उसी में रखता है धान गेहूं का बाल, जो खलिहान में हम लोग देखे हैं कि किसान लोग एक जगह एकत्रित करते हैं अनाज को, तो चूहे अपना बिल बनाकर उस धान के बाल को, गेहूं के बाल को काट कर वहां रखते रहते हैं, और इतना बिजी रहते हैं कि हमेशा कभी कहीं बिल खोदना है, कभी अनाज रखना है, और सांप को पता है कि बहुत बिजी लाइफ है इसका, तो वो आ करके बिल के पास कुंडली मार कर ऐसे बैठा रहता है कि मानो जीवित ही नहीं है। और वो बिजी लाइफ वाला चूहा अपना व्यस्त है, सांप के ऊपर से भी चढ़कर चला जाता है, तो ध्यान ही नहीं है, तो इधर से उधर जब कूदता फांदता हुआ चूहा जब एकदम आ जाता है सांप के फन के रेंज में, तो उस असावधान चूहे को सांप पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तब अब काई कोई कुछ दम नहीं, तो खा ही जाएगा। उसी प्रकार असावधान जीवों के लिए आप काल रूप से सावधान रहते हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो चाहे कहीं भी ले जाओ, अपोलो में ले जाओ या किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, अब बचने वाला नहीं है। हे प्रभु, आपकी हेतु की कृपा है कि आप मेरे पास आए, दर्शन दिए। तो मुचकुंद महाराज कहते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के बाद जब आपकी विशेष कृपा होती है तो आपके भक्तों से भेंट होता है। घूमते 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 इस संसार सागर में साधु पुरुषों का संग प्राप्त होता है, तब आपके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जिसके जीवन का लक्ष्य नारायण हो, श्री कृष्ण हो, तो यह जीवन सफल हो जाता है। जैन के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। तो यहाँ भगवान में इन लोगों का मन लगा हुआ है, यह बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा कृत पुण्य पुंजा, बहुत ज्यादा पुण्य है। पुण्य क्या है? वे तो नित्य पार्षद है, और पार्षदत्व प्राप्त करना बहुत ज्यादा पुण्य का फल है। यद्यपि वो लोग नित्य पार्षद हैं, लेकिन साधारण जीव भी अपने सुकृत के द्वारा भगवत पार्षदत्व प्राप्त कर सकता है, ये चांस है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कथा कहते कहते बीच में कमेंट्री भी दे रहे हैं। केवल साधारण कथा नहीं है, भागवत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण उपादेय है। और इसी सिद्धांत को और पुष्ट करने के लिए एक श्लोक और, यत पाद पांशु बहु जन्म कृक्षतो धृतात्म भीर जोगी भीर अप्य लभ्य स एव यद्रेग विषय स्वयं स्थित किम वर्ण्यते दिष्ट मतौ बजौ कशाम। आगे कहते हैं कि बहुत जन्मों में श्रम करके कष्ट करके जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, बहुत तपस्या करने के बाद उन जोगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का रज प्राप्त करना असंभव है, अप्राप्य है। बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले लोगों के लिए भगवान का चरण मिलना मुश्किल है। यत पाद पांशु बहु जन्म कृक्षतो धृतात्म भी जोगी भी अपि अलभ्य। कहते हैं कि जिनके चरण के पांशु, पांशु माने रज, यत पाद पांशु जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए बहुत जन्म कृक्षतो, बहुत जन्मों तक कठोर तपस्या करके धृतात्म भी अपने इंद्रियों को एकदम नियंत्रित करके जोगी भी, बड़े बड़े जोगी जन तपस्या करते हैं फिर भी अपि अलभ्य, ऐसे तपस्वियों के लिए भी भगवान के चरण रज अलभ्य है, नहीं प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। वही भगवान स एव यद दिग विषय स्वयं स्थित किम वर्ण्यते दिष्ट मतौ बजौ कशाम। सुखदेव गोस्वामी सोचे कि और पुण्य पुंज के लोगों से ब्रज गोपों की तुलना कर दी जाए, और तपस्वी हुए हैं, भजन करने वाले हुए हैं, तो उनसे तुलना किया जाए। कहते हैं नहीं, वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी बच्चों के साथ, उनके आंखों के साथ, उनके हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा कैसे कही जाए, असंभव है। किम वर्ण रहते, कैसे वर्णन किया जा सकता है। दिष्मतो ब्रजौ कसम स एव यद दृग विषय, दृग विषय माने जिनको देखने का अवसर मिलता है, जो दिन रात कृष्ण को देखते हैं, स्वयं स्थित एकदम निकट में साथ में बैठकर खाते हैं, गलबाही देकर चलते हैं, कभी कभी कुश्ती भी करते हैं, किम वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौ कसम। तो इस प्रकार दो श्लोकों में बीच में सुखदेव गोस्वामी कमेंट्री देने लगे। इस कथा को कहते कहते बीच में उन सौभाग्यशाली परिकरों के सौभाग्य का वर्णन करने लगे, कैसे वर्णन किया जा सकता है। तो ब्रजौ कसम, ब्रज में जिनका ओकस है, ब्रज ही जिनका घर है, ऐसे ब्रजवासियों का वर्णन कैसे किया जा सकता है, असंभव है। नहीं, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है, बड़े आनंदित है। इसके बाद आगे अब बच्चे खेलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, आनंद के साथ जा रहे हैं, बड़े सुखमय जीवन है। लेकिन एक दुष्ट को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा, अब बीच में डिस्टर्ब करने के लिए प्लानिंग कर लिया। एक पापी असुर जिसका नाम ही अघ था, अघासुर नामक एक असुर, नहीं देख पाया किसी के सुख को, किसी की बढ़ती को, किसी के आनंद को, दुष्ट हृदय लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए ट्रक वाले अपने पीछे लिखे रहते हैं, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ऐसे बुरे नजर वाले भी होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता है। अथा घनाभ्य पतन महासुर तेषाम सुख के डन वीक्षणाक्षम नित्यम यदंत निज जीवित सुभी पिता मृतप्य मरई प्रतीक्षते। उस समय अघासुर नामक एक दैत्य था जो कंस का सखा था, वह आ गया ब्रज में उसी समय, और वह तेषाम सुख कीड़न वीक्षणाक्षम, वह सुखपूर्वक खेलते हुए उन गोप बच्चों का खेल नहीं देख पाया, अक्षम नहीं, देखने में समर्थ नहीं हुआ। नित्यम यदंतर निज जीवित भी वह इतना भयंकर था वह असुर कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नित्यम यदंत निज जीवित भी पीता मृतई अप्य अमरई प्रतीक्षते। अमृत पीने वाले देवता लोग जो अमृत पी चुके हैं समुद्र मंथन के बाद, उनको जल्दी नहीं मरना है, ऐसे देवता लोग भी उस असुर से डरते रहते थे। अमृत पान करने वाले देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित होते थे कि मार न डाले, इसलिए वे उसके मृत्यु का इंतजार करते थे, कब मरेगा। मृतई प्रतीक्षते, वो प्रतीक्षा करते थे वो कब मरेगा कब मरेगा। इतना सताता था देवताओं को, बहुत बड़ा पापी था, बहुत भयंकर पापी था। तो वह अघासुर आ गया। दिष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुर कंसानुशिष्ट सबकी बकानुज अयम तुमेशो दरनाश कृतयो दयोर ममैनम सबलम हनिषे। तो जब अघासुर देखा कि कृष्ण खेल रहे हैं, उनके साथ ही खेल रहे हैं, तो दिष्ट्वार भकान कृष्ण मुघान अघासुर कंसानुशिष्ट सह बकी बकानुज। उसके विषय में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वह कंस का भेजा हुआ था और कंस का अनुगत था, और बकी और बका दोनों का अनुज था। बकी माने पुतना और बका माने बकासुर, बकी और बक का अनुज था, पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। कंस तो उसको प्रेरित किया ही, लेकिन स्वयं उसको कृष्ण के प्रति क्रोध था। वह मन ही मन सोच रहा था, दिश्वार भकान बच्चों को देख करके सोच रहा था कि अयम तुम्हें सोदर नाश कृतयो, इन लोगों को इन साथियों के साथ कृष्ण श्रीदामा आदि सुबल श्रीदाम आदि सबके साथ मुंह में लूंगा और मार डालूंगा। द्वयो ममैनम सबलम हनिष्य, सबको मारूंगा। यह विचार करके वो आया। एते यदा मर सुहृदोस्ति लापह कृतास्तदा नष्ट समाबजौ कसह प्राणे गते वर्ष मसुकानुचिंता प्रजा सव प्राण भीतो ही जेते। तो इस प्रकार वह मन ही मन सोच रहा था कि जब ये लोग हमारे मुंह में आ जाएंगे तो इनको मार डालूंगा, और इनको मार करके अपने भाई और बहन का बदला लूंगा। इन सबको मार करके, और इससे हमारे भाई और बहन संतुष्ट हो जाएंगे, उनको तर्पण करूंगा। इस प्रकार विचार करके वह वहां आ गया, और आ करके कैसा अपना रूप बनाया। असुर लोग बहुत सिद्धि प्राप्त किए रहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, कठोर हृदय के होते हैं, तपस्या सह लेते हैं। तो आ करके जिस रास्ते से बच्चे आ रहे थे, गोप सखा लोग बछड़ों के साथ आ रहे थे वन में, उसी रास्ते में अघासुर अपने शरीर का विस्तार किया, वही मार्ग में लेट गया, अजगर का रूप धारण कर लिया। और अजगर का शरीर इतना बड़ा, एक जोजन लंबा, एक जोजन में चार कोश होता है, और चार कोश मतलब एक कोश में 3 किलोमीटर करीब होता है, मतलब 12 किलोमीटर का अपना शरीर विस्तार किया। विशाल मोटा तगड़ा शरीर, अद्भुत। और उसका नियत यह था कि सभी बच्चे अंदर आ जाएंगे तो उनको निगल जाऊंगा। ऐसे मुंह फैलाकर उसका जीभ एकदम रोड में मिल गया, सड़क में। और बच्चे उस रास्ते से आ रहे थे, आने लगे, और शरीर इतना विस्तार कि अपना जबड़ा के ऊपर का जबड़ा आकाश जैसा दिख रहा था। और उसका नियत था कि सब लोग इस गुफा में आ जाएंगे पेट में, तो सबको दबोच लूंगा, कृष्ण भी आ जाएगा तो उसको दबोच लूंगा। इति व्यवस्यास अजगरम बृहद बपुः स योजनाया महादीपी वरम धृत्वाद्भुतम व्यात गुहाननम तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशया खल। यह दुष्ट अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेटा, उसका नियत था कि सभी बच्चे अंदर आ जाएंगे तो निकल जाऊंगा। धरा धरोष्टो जलदो तरोष्टो दरिया ननांतो गिरिशिंग दंष्ट धंतांतराश्यो वितता ध्वजिहुआ परुषा निलक्ष्वा सदवेक्ष रोष्णः। इतना विशाल शरीर बढ़ाया कि नीचे पृथ्वी का स्पर्श किया और ऊपर का ओठ एकदम आकाश में बादल को टच कर रहा था और पर्वत के शिखर जैसा ऊपर के भाग दिख रहा था और भीतर मुंह के अंदर बहुत ज्यादा अंधकार था। जब सांस लेता था छोड़ता था तो आंधी की तरह चल रहा था, हवा लग रहा था, दवाग्नि दहक रहा था, भीतर जो मरे हुए पशुओं का गंध आ रहा था, लगता था कि उसमें से आँच निकल रहा है। तो कभी कभी सुबह सुबह भी बहुत जोर से आंधी चलने लगता है, गर्म हवा चलती है, तो वैसे गर्म हवा चल रहा था उसके शरीर से। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ रहे थे कि वृंदावन का कोई दृश्य है और सुबह में सूर्योदय होने वाला है इसलिए आकाश लाल है। उसके जबड़े लाल दिख रहे थे तो बच्चे सोच रहे थे सूरज निकलने वाला है इसलिए लालिमा छाई है। इस प्रकार बच्चे समझ रहे थे कि ये कोई वृंदावन की शोभा है और आगे बढ़ते जा रहे थे। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनश्रियं व्याता जगरतुंडेन हितप्रेक्षन्ते स्म लीलया। अघासुर का रूप देखकर बच्चे समझ रहे थे कि कोई वृंदावन का विशेष शोभा है। वे कौतुक बस खेलते हुए जा रहे थे और उत्प्रेक्षा भी कर रहे थे, उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया, उत्प्रेक्षा कर रहे थे, उत्प्रेक्षा में संभावना कर रहे थे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कैसा लग रहा है, ये दृश्य देखो देखो विचार कर, सूर्योदय हो रहा है, आकाश कितना लाल बना हुआ है। तो एक कहता है कि अरे लगता है कि अजगर का मुंह है, फिर दूसरा कहता है अहो मित्राणी गदत सतकूटम पुरस्थितम आत्मसंग्रसना व्यात व्याल टुंडा यते नवा। कोई कहता देखो भला बताओ ये हमारे सामने जीव जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सत्वकूटम पुरस्थित कोई ऐसा जीव है बैठा हुआ है और हमें निगलना चाहता है, इसका मुंह अजगर जैसा नहीं लग रहा है, व्याल टुंडा यते नवा, ये अजगर जैसा नहीं लग रहा है, लगता है कि कोई जीव है मुंह फैलाया है। दूर से जब देखे, अभी घुसे नहीं थे, इसके पहले देखे आकाश के तरफ उसके मुंह के तरफ तो कहेगी अजगर जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हमको तो मालूम पड़ता है कि सचमुच अजगर है। सत्यम अर्क करा रक्तम उतरा हनुवत घनम अधरा हनुवत द्रोध तत्प्रतीक्षयारुणम। कहते हैं सत्य कह रहे हो, सूर्य उगने वाला है ना, इसलिए सूर्य के किरण से आकाश की लालिमा दिख रही है, लेकिन ये लालिमा जो है सूर्य के किरण का है, अभी अभी सूर्य उगने वाला है तो ये बादल लाल हो गए हैं, लेकिन ठीक ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर का ओठ हो अजगर का, आकाश ऐसा बन गया है। बादलों की परछाई से देखो, बादल की परछाई से नीचे की भूमि भी लाल दिख रही है, उसके जीभ पर रोड को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि उस नीचे के भूमि में भी जो लालिमा है ना, वो आकाश की लालिमा है, उसकी प्रतिछाया है, ये भी लाल हो रहे हैं और ऐसा ये दिख रहे हैं कि नीचे का ओठ हो, ऊपर आकाश लग रहा है कि अजगर का ऊपर का ओठ है और धरती नीचे के ओठ जैसा लग रही है। वास्तव में प्रतिस्पर्धते शिखभ्याम सभ्या सभ्य नगोदरे तुंग सिंगालयो पेता तदृष्टा भी इश्च पश्यत। तो इस प्रकार देखते देखते आपस में कह रहे हैं कि देखो सचमुच सही, ये बाएं दाएं की ओर देखो ना, ये गिरी कंदराएं वृंदावन में जो पर्वतों की कंदराएं हैं, पहाड़ हैं, वो अजगर के जबड़े जैसे लग रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि अजगर है, लेकिन ऐसा लग रहा है, ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां साफ साफ इसके अजगर के डाढ़ जैसे लग रहे हैं। आस्त्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति ऐसा मंतर्गतम ध्वंतम एतदप्यंतरानम। और नीचे जीभ देखो ना, ये लंबी चौड़ी सड़क अजगर की जीभ जैसी लग रही है। गिरी सिंहों के बीच अंधकार, मुंह के भीतर का भाग लगता है कंदरा का अंधकार, अद्भुत लग रहा है। इसके भीतर भीतरी भाग लग रहा है, अजगर के पेट दिख रहा है लगता है। सब लोग अपने अपने ढंग से वर्णन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये जो हवा आ रही है इसमें दुर्गंध है, और ये दुर्गंध क्यों आ रहा है, क्योंकि जंगल में कभी कभी आग लग जाते हैं और आग लगने से जीव जंतु मर जाते हैं, उन मरे हुए पशुओं का दुर्गंध आता है। वो दुर्गंध ऐसा लग रहा है कि अजगर के पेट से मरे हुए पशुओं का गंध आ रहा है। ये दुर्गंध देखो, मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों का मांस का दुर्गंध हो। सब अपने ढंग से वर्णन कर रहे हैं। दाओष्ण खरवातोयम श्वासवत भाति पश्यत तद दग्ध सत्व दुर्गंध हो। जीव जब उसके सत्व जीव के लिए कहा गया है, तो जो जीव अजगर के पेट में मर जाते हैं, गंधो अप्यंत रामिश गंधवत, ऐसा लग रहा है कि वो मांस खाया है, जीवों को खाया है, प्राणियों के दुर्गंध जैसा मालूम पड़ रहा है। तो इस प्रकार सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हम लोग सशंकित होकर चलते जा रहे हैं और कहीं इसके मुंह में चले गए और हमको दबा लिया तब, अरे जब शंका हो गया तो मत चलो ना, इधर हट जाओ। तो दूसरा कहता है, अगर इसके पेट में हम चले जाएंगे दबा लेगा तो ये भी सारे बक की तरह मरेगा, क्योंकि बकारी हमारे साथ है। आसमान किमन ग्रसिता निविष्ठा नयम यथाचेद बकवत बिनक्षति। अगर हम लोग इसके मुंह में चले गए और हम लोगों को दबोच लिया तब, अजगर अगर शंका हो रहा है तो क्यों जा रहे हो, दबोच लिया तब नयम तथा चेद बकवत बिनक्षति। अरे बकारी तो साथ में है ना, कृष्ण भी साथ है, अगर हमको दबा लेगा तो बकवद बक्का सुर की तरह इसका भी विनाश होगा। छड़ाद नेति बकायुषन मुखम बिक्षो धसंत करताड नहीं रे, और उत्साह में हो गए। जब बकारी है तो क्या बात है, ताल ठोकते हुए एकदम घुस गए, चलते जा रहे हैं। इस प्रकार हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाए तो क्या हमें निगल जाएगा, अजी क्या निगलेगा, कहीं ऐसा करने की ढिठाई किया तो क्षण भर में बकासुर की तरह मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह कहते हुए बच्चे बड़े सुंदर आनंद के साथ हंसते हुए ताली पीट पीट कर आघासुर के मुंह में घुस गए। जान बुझ कर, कुछ तो शंका हो ही रहा था, फिर भी घुस रहे हैं। इस भरोसा पर, इतना विश्वास अगर किसी को भगवान पर हो जाए तो कोई दुख नहीं आ सकता। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। इन बच्चों को पूरा विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे साथ कृष्ण है। इस विश्वास के साथ बच्चे जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, और भगवान पीछे से सुन रहे हैं इन लोगों की बात। इत्थम मिथो तथ्य तमाज्य भाषितम सुत्वा विचिन्ते तमिषा मिषायते रक्षो विदित्वा खिलभूत हितसिता स्वानाम निरोधुम भगवान मनो दधे। भगवान सुन रहे हैं, ये बच्चे अनजान बच्चों की आपस में भ्रमपूर्ण बातें भगवान सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं, कि ये असली अजगर को मिथ्या समझ रहे हैं। इत्थम मिथो तथ्य तथ्यम अतद ज्ञभाषितम, इनको पता नहीं चल रहा है। सुत्वा विचिन्त्यत यह मृषा मिषायते, ये सचमुच घटना को झूठा मान रहे हैं, आपस में भ्रमपूर्ण बातें कर रहे हैं। अरे देखो, इनको सच्चा सर्प झूठा प्रतीत हो रहा है, भगवान सोच रहे हैं। ये सचमुच का अजगर इनको झूठा लग रहा है और वास्तव में राक्षस है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, भगवान समझ रहे हैं। रक्षो विदित्वा खिलभूत हिर्षित स्वानम निरोधुम भगवान मनोदधे। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं, उनसे भला क्या छिप सकता है, समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हैं। वो कहीं से बाहर से पता लगाना है कि आघासुर असुर है कि क्या है, आघासुर के भीतर भी है। तो सबके हृदय में रहने वाले भगवान से क्या छिपा है, वो जान गए सब कुछ कि अघासुर है, लेकिन बच्चों को रोके नहीं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो मन बना लिए, निश्चय कर लिए कि अपने सखाओं को इसके मुंह से बचाना है। कैसे बचाना है, तो भगवान यह सोच रहे थे, ग्वाल बाल बछड़ों के साथ अघासुर के पेट में घुस गए। तावत प्रविष्टात ससुरोदरांतरम परम न गिरणा शिशव सवत्सा प्रतीक्षमाणे न बकारी वेशनम हतस्तकांता स्मरणे न रक्षसा। इस प्रकार भगवान विचार कर रहे थे कि ये बच्चे अनजान की तरह जा रहे हैं और अघासुर के मुंह में बड़े उछलते कूदते जा रहे हैं। भगवान सोचे कि इन बच्चों को बचाना है, इसके लिए भगवान भी आ रहे थे पीछे से, और अघासुर प्रतीक्षमाणे न बकारी वेशनम, वह तो इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, किसका, बकारी का, जो बक्कासुर का हत्या किया है, बक्कासुर के दुश्मन का इंतजार कर रहा था, बक अरी बक्कासुर के दुश्मन का इंतजार कर रहा था, हतस्त कांत स्मरणे न रक्षसा, स्मरण कर रहा था कि यह कृष्ण हमारे भाई का वध किया है, हमारी बहन का वध किया है, ये भी आ जाए तो एक साथ मुंह बंद करूंगा। तो इस इंतजार में वह निगला नहीं बच्चों को, वो दबाया नहीं अपने अधरों को, वैसे खुला रखा, बच्चे जा रहे हैं और वो इंतजार कर रहा है कृष्ण का। तो भगवान तान वीक्ष कृष्ण सकल भय प्रद, सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, तान वीक्ष उनको देख लिए, बच्चों को पेट में जाते हुए देखकर कृष्ण, कौन कृष्ण, सकल भय प्रद संपूर्ण जगत को अभय प्रदान करने वाले यनन्यनाथान सकरावद वच्युतान, जो संपूर्ण जगत को सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, वो भगवान सोच रहे हैं जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूं, ही विचार कर रहे हैं कि ये मेरे अनन्य है, ही अनन्य नाथान, ये मेरे अलावा और किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चे इसके पेट में चले गए जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूं, मेरे हाथ से निकल गए जैसे कोई तिनका उड़कर आग में पड़ जाए, जैसे छोटे छोटे घास सूखे हुए आंधी तूफान से उड़ते हुए किसी जलते हुए आग में आ जाए तो आते ही फन से जलकर खत्म हो जाएगा, वैसे बच्चे देखो इस राक्षस के मुंह में चले गए, अपने आप मृत्यु के मुख में चले गए। ये विचित्र लीला है भगवान का, और इस दृश्य को देखकर तान वीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो यनन्यनाथान स्वकराद वच्युतान दीनान समृतोर जठराग्नि घासान घृणादितो दिष्ट कृतेन विस्मितः। घृणा का अर्थ संस्कृत में कृपा होता है, दया। तो भगवान देख लिए कि ये बेचारे अबोध हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, ये इस अजगर के मुंह में चले गए, तो भगवान को विशेष दया आई, कृपा। तब भगवान दया से द्रवित हो गए और सोचने लगे, कृत्यम किमत्रास्य सकलस्य जीवनम नवा अमीशाम च सताम विहिंसनम द्वयम कथम स्यादिति संविचिन्ततात् ज्ञात्वा विसंतुण्डमशेष दिग्घरिः। तो इस प्रकार श्री भगवान दया से भर कर सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो चले गए, रोक नहीं पाया, ऐसा कौन उपाय किया जाए जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और बच्चे भी बच जाए, दोनों काम कैसे हो। इसलिए भगवान नवा अमीशाम च सताम विहिंसनम, इसको मारना है लेकिन अपने भक्तों को नहीं, द्वयम कथम स्याद इति सब विचिन्तय, दोनों कैसे होगा, द्वयम कथम स्याद, ये दोनों कैसे होगा, ऐसा सोचकर ज्ञात्वा विसंतु नमशेष दिग्घरिः, ऐसा विचार करके भगवान अब जो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते हैं, हम लोग तो जो सामने देखते हैं उसको भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ उसको भी जानते हैं, आगे क्या होना है उसको भी जानते हैं, सामने वाले को तो जानते हैं, उनसे तो कुछ छिपा नहीं है, इसलिए अपना कर्तव्य समझकर भगवान उस अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे, जाने लगे। अब जब भगवान जाने लगे तो अघासुर के वध को देखने के लिए आकाश के ऑडिटोरियम में जुटे हुए थे देवता लोग। देवताओं को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। लो तदा घनश्यदा देवा भयाधाहेति चुक्रुषु। सारे देवता जो आकाश में अघासुर के वध देखने आए थे और उनके विषय में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बड़ी सावधानी से वर्णन करते हैं, एकदम स्पॉट पर सामने नहीं आए थे इस मैच को देखने के लिए। अगर अघासुर की दृष्टि पड़ जाएगी कि तमाशा देखने आएंगे तो खैर नहीं है, हमारे मृत्यु को देखने आए हैं। तदा घनक सदा देवा, बादल के ओट में छिप कर देवता लोग देख रहे थे कि कहीं अघासुर इतना विशाल मुंह बढ़ाया है तो आंख उसका ऊपर दृष्टि पड़ी तो तुम लोग क्यों आए हो, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो ये कहेंगे थोड़े कि मैच देखने आए हैं, मार डालेगा। इसलिए घनक छदा देवा, बादल में छिपे हुए देवता लोग देख रहे हैं, भयभीत अवस्था में देख रहे हैं। और जो ही देखे तो भयाद हाहेति चुक्रुषु, हाय 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 हाय, अब कृष्ण भी चले गए, बच्चे तो गए ही, कृष्ण भी जा रहे हैं, इनको मार डालेगा तो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, इन्हीं पर भरोसा था कि इनसे मरेगा और देखो ये चले गए। जहरीसुर ये चकमसाद्या और इस घटना को जानकर कुछ लोग प्रसन्न भी हुए, देवता लोग तो हाय हाय करने लगे और कंसाद्या, कंस और कंस के साथी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कौरापा त्वग बांधवा और उसके बंधु लोग अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस सब प्रसन्न हो गए, अब काम बन गया, कृष्ण मारा जाएगा, अब मुंह में जा रहा है। तो श्रुत्वा भगवान कृष्ण त्वय सार्वक वत्सकम चूर्णी चिकीर्षितो आत्मानम तरसा बवृधे गले। तो अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित कृष्ण को अपने अंदर पाकर बहुत प्रसन्न था, अब सोच रहा था जब ही अंदर आएगा दबा दूंगा और चकनाचूर कर डालूंगा। तो इस प्रकार सोचकर वह बड़ा खुश था, मन में था कि चूर्णी चिकित्सित हो आत्मानम तरसा बवृधे गले, वो मन बना रहा था कि हम इसको गला में दांत के पास आते ही दबा दूंगा, चूर्ण कर दूंगा। ठीक उसी समय श्री भगवान आत्मानम तरसा बवृधे गले अपने शरीर को सहसा अचानक बढ़ाने लगे, भगवान अपने शरीर को विस्तार करने लगे, फुर्ती से बढ़ा लिए और बढ़ा करके इतना शरीर बढ़ाए, ततो तिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो युद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतास्तुतस्ततः पूर्णो अनंतर रंगे पवनो निरोधो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो वही। श्री भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाए कि उसका गला एकदम एयर टाइट कस गया, तो अब हवा जाना बंद हो गया, पूरा एयर टाइट, और इसके कारण उसके आंख निकल गए, विनिर्गतो वही, आंख बाहर निकल गया, और इसके साथ वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा, सांस भी रुक गया, छटपटा रहा था तब तक उसके शरीर से उसके सिर को फाड़ते हुए ब्रह्मरंध्र को फोड़कर प्राण निकल गया, मूर्धन विनिष्पाट्य, सिर से उसके प्राण निकल गए और उसका शरीर बम ब्लास्ट की तरह फटा और फिर वो समाप्त हो गया। कुछ करना नहीं पड़ा, हथियार नहीं उठाए, तमाचा भी नहीं मारे, केवल एयर टाइट कस दी अपने शरीर से, बस समाप्त। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सांशु हृदः परे तान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। उस समय भगवान के दृष्टि तो उस पर पड़ ही रही थी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे कि उसकी प्राण जब शरीर से निकला, इंद्रियों से शरीर से बाहर हुआ, तो उस समय भगवान मुकुंद की दृष्टि उस पर पड़ी, उससे उसका प्राण आकाश में निकलकर कुछ देर तक घूमता रहा और श्री भगवान अपने साथियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और बछड़ों के ऊपर अपनी दृष्टिपात किए। जब ही भगवान की अमृतमय दृष्टि पड़ी, प्राणेषु वत्सान सुहृदौ परेतान, एक तरह से मर चुके थे बेचारे। दृष्टिया स्वयत्थाप्य तदन वितः पुनः, भगवान के दृष्टि पड़ते हुए उठ गए, जीवित हो गए। बक्तान मुकुंदो भगवान बिनिरेयु, इसके बाद भगवान उन गोपों के साथ, गोप सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ उसके मुंह से बाहर निकले। भगवान अपने गोप सखाओं के साथ अघासुर के पेट से बाहर निकले। इसके साथ सुखदेव गोस्वामी अब अघासुर की अवस्था का भी वर्णन करते हैं। क्या हुआ? पिनाहि भोगो थित मद्भुतम महद, ज्योति स्वधाम नाम ज्वलयत दिशो दशः, प्रतीक्षखे व स्थितमीश निर्गमम विवेश तस्मिन मिशताम दिवौकसाम। तो उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत अलौकिक ज्योति निकली और उस समय ज्योति दसों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। थोड़ी देर तक आकाश में भगवान के निकलने का प्रतीक्षा करता रहा और जब बाहर भगवान निकल कर आए तो सबके देखते देखते वह ज्योति कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई, श्री कृष्ण में समा गई। ततो तिहृष्ट स्वकृतो कृतारहणम पुष्पै सुराम अप्यसरसश्च नर्तनै गीतै सुगा वाद्य धराश्च वाद्यकै अस्तवैश्च विप्रा जयमी सुनै गणा। भगवान के शरीर में विलीन हो गया वो ज्योति। इस पर आचार्यों का कहना है कि वह देखने में तो ऐसा है कि संयुक्त मुक्ति प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे वर्णन है 30वें श्लोक में कि वह सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया, भगवान के समान सुंदर शरीर प्राप्त किया घासुर। आगे वर्णन है, शाम के सत्र में इसको कहा जाएगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अघासुर का शरीर सांप का था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से सायुज मुक्ति प्राप्त किया। लेकिन अगले श्लोक से सिद्ध होता है कि वह दंत्र वक्त और शिशुपाल की तरह भगवत पार्षदत्व सारूप्य मुक्ति प्राप्ति का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इसको आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जीव गोस्वामी की टीका की व्याख्या करते हुए कि सारूप्य मुक्ति मिली या सायुज मुक्ति नहीं, उसको सारूप्य मुक्ति मिली, विष्णु जैसे उसको चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। ऐसा कैसे हुआ? वो तो असुर था। तो इसका व्याख्या आगे किया गया है, जो तेज अजगर के शरीर से निकला वो आध्यात्मिक शुद्ध सत्व पाकर भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी कृष्ण उसके शरीर के भीतर रहे। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को सारूप या सायुज मुक्ति क्यों प्राप्त हो गई, इस पर आश्चर्य होता है। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ऐसे संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने के लिए रखा, निकला और प्रतीक्षा करता रहा। कृष्ण पूर्ण तेज हैं और हर जीव उनके तेज का अंश है, जैसा कि यहाँ सिद्ध है। हर जीव का अपना अपना तेज होता है। असुर का तेज कुछ काल तक उसके शरीर के बाहर रहा, वह पूर्ण तेज ब्रह्म ज्योति से मिल नहीं पाया। यह ब्रह्म ज्योति भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ती है। निकला तो जाना चाहिए, लेकिन इंतजार किया कुछ देर तक, यह सिद्ध करने के लिए कि हर व्यक्ति व्यष्टि है, अंश है भगवान का। और कृष्ण ने व्यष्टि तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा रहने दिया, जिसे हर कोई देख सके। तब कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती ही है, चाहे वह सायुज मुक्ति हो, सारूप्य मुक्ति हो या सायुज मुक्ति हो, कुछ भी हो। और जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त करते हैं उनकी मुक्ति विशेष प्रकार की होती है, उनको विमुक्ति कहते हैं। तो इस तरह सर्वप्रथम कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ, ब्रह्म ज्योति में मिल गया। यह विलय सायुज मुक्ति कहलाती है, लेकिन आगे के 38वें श्लोक में सारूप्य मुक्ति का वर्णन है, भगवान जैसा शरीर प्राप्त किया। तो भागवत में दो तीन स्थानों पर इसकी पुष्टि हुई है, अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। पुनः तर्क किया जा सकता है कि वह ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल गया। तो इसका उत्तर यह है कि जय तथा विजय को तीन जन्मों के बाद पुनः सारूप मुक्ति मिली और अघासुर को भी भगवान के सानिध्य के कारण ये मुक्ति मिल गई, इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान के संपर्क से मिला, भगवान कुछ भी किसी को कर सकते हैं, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। और अंतिम श्लोक जो मैं कहना चाहता था, 34वां इस सत्र का अंतिम श्लोक, ततो तिहृष्टा स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पै सुगा अप्य सरसस्य नर्तनैः गीतैः सुरा वाद्य धराश्च वाद्यकैः यस्त्वैश्च विप्रा जयनी स्वनैर्गणा। जब अघासुर मारा गया तो उसके मृत्यु का इंतजार करने वाले देवताओं को तो खुशी का ठिकाना नहीं। स्पष्ट हो गया कि मारा गया तो ये लोग जो नंदन कानन का पुष्प लेकर आए थे, आकाश में अपने विमान में रखे थे, पुष्पों की वर्षा करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, स्वर्गीय अप्सराएं, गंधर्व लोग गाने लगे, विद्याधर बाजे बजाने लगे, ब्राह्मण लोग स्तुति पाठ करने लगे और पार्षद लोग जय हो प्रभु, इस तरह से कृष्ण का अभिनंदन करने लगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह है जीवन की सफलता। वास्तव में हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की महिमा का गायन करे। यदि आप गायक हैं, अच्छी तरह गा सकते हैं, तो भगवान के गुणगान अवश्य करें। यदि आप संगीतज्ञ हैं, वाद्य यंत्रों के द्वारा सुरेले तान में गा सकते हैं, तो अवश्य गुणगान करें। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्, सम्यक रूप से धर्म का परिणाम यही है कि भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हों। किसी भी प्रकार से जीवन की सफलता इसमें है कि भगवान को संतुष्ट किया जाए। इसलिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हर व्यक्ति भगवान का गुणगान करने में लगा हुआ है। सभी महान पुरुषों का यही निर्णय है कि मनुष्य को जो भी योग्यता प्राप्त हो चुका है, जैसा भी है, जिस अवस्था में भी है, उसका उपयोग भगवान के गुणगान करने में करे। देवर्षि नारद व्यासदेव के समक्ष कहते हैं, इदम ही पुंसः तपसः सुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अभी चतुर्थः कभी भी निरूपितो यदुत्तमस्लो गुणानुवर्णनम्। तो इस प्रकार विद्वानों की विद्वता का निष्कर्ष यही है कि वह भगवान के गुणों का वर्णन करें। ज्ञान का, तपस्या का, वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का, यज्ञ का, सबका अमोघ उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य यही है कि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए। यही जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को गुणों के अनुसार भगवान के गुणगान करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा, तप या आधुनिक जगत में व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि, इन सबको भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, तभी संसार का हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं। और यदि नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया और संसार को सजाने में लगा हुआ है, तो शास्त्र की युक्ति है कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम्। भगवत भक्ति से हीन व्यक्ति चाहे कुछ भी जुटा ले, कोई भी शास्त्र साधन जप तप कुछ भी कर ले और भगवान का भजन नहीं किया है, तो उसके तपस्या का, उसके साधन का केवल उतना ही श्रृंगार है जैसे शव को सजाते हैं। जिसके शरीर से प्राण निकल गया, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम्, लाश का खूब श्रृंगार करें, खूब सोना का आभूषण पहना दें या खूब महंगा कपड़ा पहना दें या पुष्प माला, तो श्रृंगार किस काम का है जिसमें प्राण ही नहीं। भक्ति रूप प्राण जिसमें नहीं है, वो कुछ भी कर ले, उसकी कोई शोभा नहीं है। और भगवान की भक्ति में सभी की सार्थकता है, तपस्या की सार्थकता, बुद्धि की सार्थकता, बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता की सार्थकता यही है कि भगवान के गुणों को गाया जाए। तो इस प्रकार भगवान की इस लीला पर सभी लोगों ने गाया है। कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग गाते हैं, कुछ स्तुति करते हैं, पार्षद लोग जय जयकार करते हैं। इस प्रकार भगवान के गुणों को गाते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभु।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक अच्छा दृश्य को देखने के लिए एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए, एक मिनट।